समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
लहरों की तरह यादें दिल से टकराती
बिल्कुल सही है। बीती यादें जब दिल से टकराती हैं तो दिल में एक जबरदस्त तूफान उठाती हैं। ऐसा तूफान जो संभाले नहीं संभलता। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कौन हाथ पकड़ता और कौन साथ छोड़ जाता है। शनिवार के दिन इन इमोशनल पंक्तियों के साथ सभी श्रोताओं का अभिनंदन और नमस्कार। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आप ही का अपना रवि कपूर और मेरे साथ हैं मेरी प्रिय सहयोगी अनीता आनंद। अनीता, आपको भी मेरा नमस्कार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी रोचक जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। राइट अनीता?
एब्सोल्युटली राइट। नमस्कार रवि, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, wherein we give you the latest in national, international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 14th of June. So let's begin with the quote of the day. Yesterday is but today's memory, and tomorrow is today's dream. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. Dream as if you'll live forever, and live as if you'll die today. And now the headlines, Ravi.
जी बिल्कुल, शुरुआत कर लेते हैं मुख्य समाचारों से। ईरान ने इसराइल के हमलों की जवाबी कार्रवाई में सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं, जिसे ऑपरेशन सीवियर पनिशमेंट नाम दिया गया है। तेल अवीव और यरूशलम में बड़े पैमाने पर हुई बमबारी के कारण इसराइल में हवाई हमले के सायरन बजा दिए गए, जिससे लाखों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। इससे कुछ घंटे पहले ही इसराइल के हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया और शीर्ष सैन्य कमांडरों को मार दिया गया। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति के बारे में फोन पर जानकारी दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री नेतन्याहू के साथ बातचीत में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर बल दिया। इसराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भी विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर को फोन पर मौजूदा घटनाक्रम के बारे में अवगत कराया। श्री जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची से भी इस क्षेत्र की ताजा स्थिति पर विचार विमर्श किया।
यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप पुरी सेड दैट द कंट्री हैज एडिक्वेट एनर्जी सप्लाईज फॉर कमिंग मंथ्स। ही इन्फॉर्म्ड दिस इन अ सोशल मीडिया पोस्ट आफ्टर होल्डिंग अ रिव्यू मीटिंग यस्टरडे विद द पेट्रोलियम सेक्रेटरी एंड हेड्स ऑफ इंडियन एनर्जी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। The oil supply update by the minister attaches importance given that the international oil prices shot up sharply yesterday after Israeli attack on Iran. India imports $150 billion worth of energy annually and imports provide over 80% of its crude oil requirement. The Central Board of Direct Taxes, CBDT, is investigating tax evasion and laundering of unaccounted income by high-risk persons through investment in cryptocurrency. Sources in the CBDT said that such entities and individuals which are engaged in virtual digital asset, VDA, transactions and have failed to comply with the Income Tax Act 1961 have been identified for verification. Sources added that data analytics had shown that significant number of persons have violated provisions of the Income Tax Act by not filing Schedule VDA of the ITR and offering tax on the income earned at a lower rate.
मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि राज्य में अगले 2-3 दिन तक धूल भरी आंधी के साथ भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी आज अलग अलग स्थानों पर लू चलेगी। बिहार, सौराष्ट्र और कच्छ में गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। इस बीच मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
The Ministry of Ayush will host Yoga Connect, a hybrid global summit on yoga for One Earth, One Health in New Delhi today. The summit is being organized as a key lead-up event to the 11th International Day of Yoga, IDY, on 21st of this month. Today, the event will bring together over 1,000 participants along with virtual attendees from leading international yoga institutions and wellness communities around the world. Experts from more than four countries, including Bahrain, the United States, United Kingdom, and South Korea will join the summit. The Yoga Prabhav Report Impact Study of International Day of Yoga over the decade will be released during the summit. In the FIH Hockey Pro League, the Indian men's and women's team will be in auction today. The Indian men's team faces a critical test as they gear up to take on Australia in Antwerp, Belgium. The match is set to begin at 2 p.m. Indian Standard Time. The pressure is mounting on the Indian side to break their four-match losing streak with just 15 points from 12 games and sitting at fifth place. While the women's hockey team is set to kick off the second and final leg of the league facing Australia, Argentina, Belgium and China in the European leg. The women in blue will take on Aussies at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London. The match is set to begin at 5:30 p.m. Indian time. Currently, the team stands at 6th rank with 9 points.
जर्मनी के म्यूनिख में विश्व कप निशानेबाजी में भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने फ्रांस की कैमिली जेड्रेजवेंस्की को हराया। विश्व कप में सुरुचि का इस स्पर्धा में ये लगातार तीसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। इससे पहले राइफल स्पर्धाओं में एलावे नील वुला रिवन और स्विफ्ट कौर समरा ने कांस्य पदक जीते थे। प्रतियोगिता में भारत 3 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब महानगरों की खबरें, शुरुआत अनीता से।
The IIT Madras students have built solar-powered cars to take part in a global contest. The car named Agnia, developed by Team Agnirath from Center for Innovation, is all set to take part in Bridgestone World Solar Challenge that features a 3,000-kilometer drive from Darwin to Adelaide, scheduled to be held from 24th to 31st of August 2025. The Bridgestone World Solar Challenge is recognized as the most demanding engineering competition in the world. Agnia is made of carbon fiber body, making it one of the largest hand layup processes ever performed by student team in India. Team Agnirath's journey was supported by sponsors Game Changer Solar, Billion Mobility, Charge Zone and Coizet. The students have upgraded the solar panel efficiency from 19% to 24%, allowing them to harness more energy even under variable conditions. Battery pack was also optimized and reduced from 5.5 kWh, cutting a down weight without compromising performance. The students have integrated a machine learning-based strategy module that makes real-time decisions during the race, factoring in weather, solar irradiance and terrain, among other factors. This allows students to optimize speed and energy usage dynamically, making Agnia one of the circuit's most data-driven student solar cars today. A former curator and an accountant of the Government Museum in Edgmore have been sentenced to 5 years rigorous imprisonment each for criminal conspiracy and misuse of public funds. This followed a detailed trial that traced a 3.4 lakh scam to forge records and fake remittances entries between 2003 and 2004. The curator and the accountant were ordered to pay a penalty of rupees 2 lakh and 1.5 lakh respectively. The court rejected pleas for leniency, stating their age and ailments did not outweigh the seriousness of the offence and breach of public trust. The scam was uncovered when a committee constituted by the Government Museum administration officials found that 81,429 from entry ticket and publication sales, 32,000 from theatre deposits and ₹228,440 from other heads had not been remitted to the Treasury. The Namma Salai mobile app, currently used to register complaints on highway department roads, will soon be expanded to cover road work across departments. The officials have been directed to integrate and road-related data from all departments into the app within a month. While Greater Chennai Corporation has the Namma Chennai app, the highway department uses its own. The Institution of Agricultural Technologies in Bengaluru has organized Desi Seeds Festival for 2 days starting today. Over 300 indigenous seeds germination experts, agri-scientists, agri-enthusiasts and consumers from across the country will share their experiences in the event to be held at the institute. The Organic Farmers Association, Crops 4HT and Keystone have joined hands with the institute to organize the event. Over 1,500 Indian seeds varieties preserved since several generations will be on display. Over 50 stalls will exhibit the Indian organic varieties of millets, pulses, vegetables and greens and roots. Seminars and workshops are organized to educate farmers about the resilience of Indian seed varieties that can withstand the impact of the climate change. They will be told to cultivate Indian seed varieties that can eliminate many problems faced by them. In a coordinated operation with the Telangana Police, the Department of Telecommunications DOT has busted an illegal telecom setup in Secunderabad that was facilitating the unlawful routing of international calls to Indian customers using SIP session initiation protocol technology. The DOT has intensified its crackdown on telecom fraud and cybercrime. An official release stated that Hyderabad unit of the DOT, acting on specific intelligence and analysis, identified the illegal operation and swiftly moved in to dismantle the setup. An SIP server, 3 laptops, 1 monitor and related network equipment was seized. Calls were found to be routed from Middle East and America, but showing local Indian numbers. Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy has said educational standards in government schools remain a top priority of the government and it will invest further to ensure quality education for every child in the state. A review meeting with senior officials in Hyderabad last evening, he announced that 571 new government schools will be set up in this academic year, with more than 20 children in both rural and urban areas. He said it is to address the gaps in access and infrastructure. He directed officials to focus on language proficiency and skill development for students, emphasizing that curriculum must evolve to make students not only academically competent, but also future ready. And now for Metro News from Delhi, Mumbai and Kolkata, over to Ravi Kapoor.
धन्यवाद अनीता. शुरुआत दिल्ली से करते हैं. दिल्ली की बीजेपी सरकार जल्द ही नई आबकारी नीति लाने जा रही है. इस नीति का मुख्य उद्देश्य अच्छी शराब की उपलब्धता सुनिश्चित करना और बिक्री तथा वितरण प्रणाली को पारदर्शी, आधुनिक और जवाबदेह बनाना है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल बताया कि नई नीति में आबकारी प्रणाली में कई सुधार किए जाएंगे, जिसमें शराब की गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण, बिक्री प्रणाली का डिजिटलीकरण, अवैध बिक्री पर सख्त कार्रवाई और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना शामिल है. उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अगुवाई वाली समिति आबकारी नीति के हर पहलू पर बारीकी से काम कर रही है. मुख्यमंत्री श्रीमती गुप्ता ने यह भी बताया कि उच्च स्तरीय समिति हितधारकों के साथ विचार विमर्श कर रही है और एक व्यापक आबकारी नीति तैयार करने के लिए अन्य राज्यों में लागू सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन कर रही है. उन्होंने कहा कि यह काम इस महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा. मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार की आबकारी नीति पर कटाक्ष करते हुए उसे भ्रष्ट, पक्षपाती और जनहित विरोधी बताया. दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने राजधानी में बढ़ते बिजली लोड को देखते हुए सभी बिजली कंपनियों को उनके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, पुराने ग्रिडों को बदलने और नई तकनीक अपनाने के निर्देश दिए हैं. ऊर्जा मंत्री ने शहर में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए बिजली कंपनियों और ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी. इस दौरान श्री सूद ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार हर नागरिक को सुचारू और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए. आगे बढ़ते हैं, चलते हैं महाराष्ट्र की ओर. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल शुक्रवार को इस साल के अंत में होने वाले 2 प्रमुख सिख धार्मिक स्मारक कार्यक्रमों के लिए पूर्ण सरकारी सहयोग का आश्वासन दिया. अपने आधिकारिक निवास वर्षा में संतों महंतों और समुदाय के नेताओं के साथ बैठक में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम और गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें गुरुता गद्दी समागम के आयोजन में पूरा सहयोग करेगा। ये कार्यक्रम 15-16 नवंबर को नांदेड़ में, 6 दिसंबर को नागपुर में और 21-22 दिसंबर को नवी मुंबई में आयोजित किए जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को वधोना पिंपल खुटा लिफ्ट सिंचाई योजना पर काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है, जिससे 7,100 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई के अंतर्गत आरवी और करंजा तालुका के 31 गांवों को लाभ होगा। वर्धा के आरवी विधानसभा क्षेत्र में विकास परियोजनाओं पर शुक्रवार को एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव 15 जुलाई तक राज्य तकनीकी सलाहकार समिति को सौंपा जाए और फिर इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाए। बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल कोलकाता की ओर। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि कई बार कोर्ट के आदेश के कारण शहर में अवैध निर्माण को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में कोलकाता नगर निगम निर्माण के सामने एक होल्डिंग लगाएगा। इसमें ध्वस्तीकरण कार्य को स्थगित करने के कारणों का उल्लेख किया जाएगा। कोलकाता के मेयर ने संवाददाताओं को बताया कि केएमसी की छवि को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। और अनीता, आप अपने श्रोताओं को मौसम की जानकारी देते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आंशिक रूप से यहां पर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश, धूल भरी आंधी, 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आज सामान्यतः बादल छाए रहेंगे तथा भारी वर्षा की संभावना है। आज का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। कोलकाता की अगर बात करें तो आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे तथा मध्यम वर्षा या गरज के साथ तूफान आने का अनुमान है। आज का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 38 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 26 डिग्रीज। Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 29 degrees Celsius and the maximum will be around 21 degrees. Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 32 degrees and a maximum of 23 degrees Celsius.
और अनीता, इससे पहले कि हम इतिहास के पन्नों को पलटें, अपने श्रोताओं को जानकारी दे दें कि आज विश्व रक्तदान दिवस है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 14 जून को मनाया जाता है। वर्ष 1997 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 100% स्वैच्छिक रक्तदान नीति की नींव डाली और वर्ष 1997 में ही संगठन ने यह लक्ष्य रखा था कि विश्व के प्रमुख 124 देश अपने यहां स्वैच्छिक रक्तदान को ही बढ़ावा दें। और उद्देश्य यह था कि रक्त की जरूरत पड़ने पर उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर अब तक लगभग 49 देशों ने ही इस पर अमल किया है।
Yes, the four core organizations, the international organizations, that is the World Health Organization, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, the International Federation of Blood Donor Organizations and the International Society of Blood Transfusion, ISBT, were brought together to raise awareness of the need for safe blood and blood products and to thank blood donors for their voluntary life-saving gifts of blood. World Blood Donor Day is one of the 11 official global public health campaigns marked by WHO, along with World Health Day, World Tuberculosis Day, World Immunization Week, World Patient Day, Patient Safety Day, World Malaria Day and World No Tobacco Day, among others.
और आइए अब जान लेते हैं कि आज 14 जून को इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई।
जी, इन द ईयर 1958 डॉक्टर सी वी रामन रिसीव्ड द लेनिन पीस प्राइज इन क्रेमलिन। इन 1995 आरबीआई अनाउंसेस द इंट्रोडक्शन ऑफ अपॉइंटिंग ओम्बड्समैन to redress grievances and disputes of bank customers. In the year 1998, S. Vijayalakshmi wins National Women's A चेस टाइटल इन मुंबई।
1999 में आज के दिन थाबो मबेकी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। सन 2001 में आज के दिन जांच आयोग ने दीपेंद्र को ही शाही परिवार का हत्यारा बताया। सन 2004 में आज के दिन पंचशील सिद्धांत की 50वीं वर्षगांठ पर बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुआ। सन 2007 में आज के दिन चीन के गोवी रेगिस्तान में पक्षी नुमा विशाल डायनासोर के जीवाश्म मिले। सन 2008 में आज ही के दिन राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 96 मीट्रिक टन की सोने की खान का पता चला। और सन 2008 में आज ही के दिन चीन के उत्तरी प्रांत शांगझी में एक कोयला खदान में विस्फोट में 27 लोग घायल हुए। और अब समय हो गया है अनीता कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथियों जयंतियों जन्मदिन के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी देने का। तो इस क्रम में आज सबसे पहला जो नाम है वो है उस्ताद असद अली खां का, जिनका जन्म तो हुआ 1937 अलवर में लेकिन इनका निधन हुआ 14 जून 2011 दिल्ली में। उस्ताद असद अली खां को रुद्र वीणा वादक के नाम से आज पूरे भारत में जाना जाता है। उस्ताद असद अली खां को वर्ष 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। श्री असद अली खां आकाशवाणी और दूरदर्शन के उच्च श्रेणी के कलाकार थे। और पुरस्कारों की बात करें तो उस्ताद असद अली खां को वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, वर्ष 1994 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा तानसेन सम्मान और वर्ष 1977 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान आदि से विभूषित किया जा चुका है।
Death anniversary of Fakir Mohan Senapati, often referred to as Utkal Vyas Kavi, Odisha's Vyas, the Indian writer, poet, philosopher and social reformer. He played a leading role in establishing the distinct identity of Odia. Senapati is regarded as the father of Odia nationalism and modern Odia literature. Mayadhar Mansingh has described Senapati as the Thomas Hardy of Odisha. Though he translated from Sanskrit, wrote poetry, attempted many forms of literature, he is now known primarily as the father of modern Odia prose fiction. His four novels written between 1897 and 1915 reflect the socio-cultural conditions of Odisha during the 18th and 19th centuries.
और अब जानकारी 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित कार्य माणिवकाम श्रीनिवास कृष्णन के बारे में, जिनका जन्म हुआ 4 दिसंबर 1898 को लेकिन निधन हुआ 14 जून 1961 को। आप प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक थे। मद्रास विश्वविद्यालय ने इनको DSC की उपाधि प्रदान की थी। श्रीनिवास कृष्णन सन 1945-46 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष चुने गए थे। भौतिकी की प्रत्येक दिशा में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। प्रकाश की चुंबकत्व इलेक्ट्रॉनिकी, ठोस अवस्था भौतिकी तथा विशेषकर धातु भौतिकी पर इन्होंने अनेक खोजें की थीं और सीवी रमन के साथ रमन प्रभाव की खोज में भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था।
टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर हु इज नोन फॉर हिज एपिक फिल्म मुगल-ए-आज़म वी आर टॉकिंग अबाउट। K. Asif, born on this day in 1922, his directorial debut, Fool, released in 1945, did very well at the box office. In the year 1944, Asif planned to make a film called Mughal-e-Azam, based on the life and times of Mughal Emperor Akbar's great court dancer, based on an Urdu novel, Anarkali, written by Syed Imtiaz Ali Taj, with Chandra Mohan in the male lead and then upcoming actress Nargis in the female lead. But somehow it could not happen, and he produced the film Halchal and released it in 1951. At that time, Asif recast Mughal-e-Azam with Dilip Kumar in the main lead and Madhubala in the female lead and began the production of the film in the same year. In 1960, after 12 years in production, Mughal-e-Azam was released and became a huge hit at packed cinema houses across India, and it's all history. Let's listen to a song from the same movie.
A आइए अब अपने श्रोताओं को जानकारी देते हैं। भारतीय फिल्म अभिनेता, थिएटर और टीवी कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, जिनका जन्म हुआ 21 जनवरी 1986 पटना में, लेकिन निधन हुआ 14 जून 2020 मुंबई में। सुशांत सिंह राजपूत ने सबसे पहले किस देश में है मेरा दिल नामक धारावाहिक में काम किया, लेकिन उनको पहचान एकता कपूर के धारावाहिक पवित्र रिश्ता से मिली। इसके बाद उन्हें फिल्मों के प्रस्ताव मिलना शुरू हुए। उनकी पहली फिल्म काय पो छे थी, जिसमें उनके अभिनय की बहुत तारीफ हुई। काय पो छे के बाद सुशांत सिंह राजपूत शुद्ध देसी रोमांस में वाणी कपूर और परिणीति चोपड़ा के साथ दिखे। फिल्म सफल रही और सुशांत का फिल्मी कैरियर परवान चढ़ गया।
Today is the birth anniversary of Bharat Bhushan Gupta, popularly known as Bharat Bhushan, the Indian actor, scriptwriter, and also the producer. He was born in Meerut and brought up in Aligarh, Uttar Pradesh. Bharat Bhushan began his career in 1941 with a small role in Kedar Sharma's superhit film Chitralekha. Despite this, his career didn't take off, as his films, apart from another Kedar Sharma directional Suhagrat, released in 1948, did not perform very well commercially. In 1952, he appeared and played the lead role in Vijay Bhatt's musical romantic drama film Baiju Bawra. The film emerged as a huge blockbuster at the box office and made Bhushan a bankable star. His music by Naushad, songs like Tu Ganga Ki Mauj Main Jamuna Ka Dhara, O Dunya Ke Rakhwale, Sun Dard Bhare Mere Nale, Man Tadpat Hari Darshan Ko Aaj. I'm playing a snippet of a song from the film Takdeer, picturized on Bharat Bhushan.
जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए।
और अब अपने शोधों को जानकारी देते हैं। किराना घराने की हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका हीराबाई बरवेदकर के बारे में, जिनका जन्म हुआ 29 मई 1905 और इन्होंने इस दुनिया से विदा ली 20 नवंबर 1989 को। हीराबाई बरवेदकर को कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हीराबाई बरवेदकर एक प्रतिभाशाली गायिका ही नहीं बल्कि भारत की पहली महिला कलाकार थी, जिन्हें पुरुषों के वर्चस्व के दौर में लोग कंसर्ट में सुनने आते थे।
Birthday of Pritam Chakraborty, popularly known as Pritam, the national award-winning Indian composer, instrumentalist, music producer, and also a singer. Graduating from FTI in sound engineering, he worked as an ad jingle composer for a long time, sound engineer and theme music composer for teleserials. Later debuted as co-composer alongside Jeet Ganguly in 2001 Hindi film Tere Liye. I'm playing a snippet of a song from the movie Life in a Metro. And today is also the birthday of Jubin Nautiyal, the Indian playback singer, live performer. In June 2022, he won the IFA Award for Playback Singer Male for the song Raatan Lambiyan from Shershah, an upcoming male vocalist of the year. A small bhajan snippet sung by Jubin Nautiyal.
सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी मन मंदिर में।
और और अब समय हो गया है अपने श्रोताओं से आज्ञा लेने का, तो चलते चलते आज का विचार की वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। इसी विचार के साथ रवि कपूर और अनीता आनंद को दीजिए इजाजत।
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15. Thanks for tuning in. Have a great day. Namaskar, namaskar. From both of us.